आज है अप्रैल महीने की 6 तारीख दिन शुक्रवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराए गए सलमान खान की जमानत पर फैसला टला, आज भी रहेंगे जेल में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आरक्षण के मामले में दिया बड़ा बयान।
कान खोड़ कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है।
उत्तराखंड में एक बच्ची के साथ बलात्कार की झूठी खबर से भड़की हिंसा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक जीतने का सिलसिला जारी और विवेचना में आज करेंगे याद KL सहगल को। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराए गए बॉलीवुड स्टार सलमान खान को शुक्रवार को जमानत नहीं मिल सकी। जोधपुर के सत्र न्यायालय में कल फिर से इस पर सुनवाई होगी, यानी इतना तय है कि सलमान को आज का दिन भी जेल में ही बिताना होगा। जोधपुर जिला सत्र न्यायालय ने सलमान खान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की, लेकिन निचली अदालत का रिकॉर्ड न होने से अब सुनवाई शनिवार तक के लिए टल गई है। इजरायली सैन्य बलों की गोलीबारी में दो और फलस्तीनियों की मौत हो गई है और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। फलस्तीनी इजरायल से लगी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने अपनी सुरक्षा चौकियों की ओर बढ़ रहे लोगों पर गोली चलाई है। 5 अन्य स्थानों पर जुटे प्रदर्शनकारियों पर इजरायली सेना ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। फलस्तीनियों की मांग है कि प्रवासियों और उनके वंशजों को अपने पूर्वजों के इलाकों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये इलाके अब इसराइल के नियंत्रण में हैं। वहीं इसराइल के एक प्रवक्ता का कहना है कि हमास ने गजा में रह रहे फलस्तीनी लोगों को सीमा की ओर बढ़ने और इजरायली लोगों की हत्याएं करने के लिए उकसाया है। पिछले शुक्रवार को हुए ऐसे ही प्रदर्शन में इजरायली बलों ने 16 फलस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 1,000 से अधिक लोगों को घायल किया था। जलते हुए टायरों के ढेर के पास मौजूद इस फलस्तीनी प्रदर्शनकारी ने पत्रकारों से कहा, ये जलते हुए टायर जो आप देख रहे हैं, ये हम युद्ध करने के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि ये हम अपने आप को इजरायली निशानेबाज सैनिकों से बचाने के लिए लाए हैं। कैटालोनिया के बेदखल किए गए नेता कार्लस प्यूज़डीमों 12 दिनों जेल में रहने के बाद बाहर आकर स्पेन से कैटालोनिया की मांगों पर वार्ता करने का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्पेन को राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए, न कि अपने विपक्षियों और पर आपराधिक मुकदमे करने चाहिए। उन्होंने स्पेन की जेलों में बंद अपने सहयोगियों को भी रिहा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बंदियों का होना यूरोप के लिए शर्मनाक है। कार्लस प्यूज़डीमों ने कहा,
We are demanding that dialogue from the last 6 years.
हम पिछले 6 सालों से वार्ता की मांग कर रहे हैं और जवाब में हमें सिर्फ हिंसा और दमनात्मक कार्रवाइयां ही मिल रही हैं। अब इस प्रतिक्रिया का पतन देखने के बाद राजनीति करने का समय आ गया है। पूर्व रूसी डबल एजेंट सर्गेई स्क्राइपाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ है और अब वो खतरे से बाहर हैं। करीब 1 महीने पहले स्क्राइपाल और उनकी बेटी यूलिया पर रासायनिक एजेंट से हमला किया गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गुरुवार को यूलिया स्क्राइपाल ने कहा था कि उनकी हालत बेहतर है। ब्रिटेन इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताता रहा है। दूसरी ओर ब्रिटेन और सहयोगी देशों ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की इस हमले की जाँच में शामिल होने की मांग को रोक दिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। जुमा आज भ्रष्टाचार के मामले में डरबन शहर की एक अदालत में पेश हुए थे। अपने समर्थकों की भीड़ से उन्होंने कहा कि उनके पुराने दोस्त अब उनके खिलाफ हो गए हैं। जुमा ने कहा है कि वो निर्दोष हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जुमा काफी निश्चिंत दिखाई पड़ रहे थे। उनके वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि ये एक दशक से ज्यादा पुराना केस है जिसे जबरदस्ती खींचा जा रहा है और वो इस केस की वैधता को चुनौती देंगे। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने मॉरिशियस के एक खेल अधिकारी को हिरासत में लिया है। केसी तिरुवेंगदम नाम के इस अधिकारी पर राष्ट्रमंडल खेलों में एक एथलीट का यौन उत्पीड़न करने के आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि इस खेल अधिकारी ने 1 हफ्ते पहले गेम्स विलेज में 26 साल की एक एथलीट के साथ जबरदस्ती की थी। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को आज भी 2 पदक मिले हैं। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे रेहान फजल के साथ, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से। सलमान खान वाली खबर से आप समझ गए होंगे, काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराए गए बॉलीवुड स्टार सलमान खान को आज जमानत नहीं मिल पाई। जोधपुर की सत्र अदालत में कल फिर इस पर सुनवाई होगी। वहीं जोधपुर के निकट एक कांकाणी नाम का गांव है, जहां पर विश्नोई समाज के लोग अदालत के फैसले से बहुत बहुत खुश हैं। नारायण बारेट की रिपोर्ट।
कोई 19 साल पहले इसी कांकाणी गांव में सलमान खान ने हिरणों को निशाना बनाया था, लेकिन अब वहां हिरण कुलांचे भरते नजर आते हैं और परिंदे ऐसे चहचहाते हैं गोया वे अपने रक्षकों की प्रशस्ति का गान गा रहे हों। कांकाणी गांव में सलमान के हाथों मारे गए हिरणों की याद में स्मारक बना है। कांकाणी के बंशीलाल विश्नोई कहते हैं, सलमान ने निरीह प्राणियों का शिकार कर अच्छा नहीं किया।
हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, हम भी उनके फैन थे सर, लेकिन जब इन्होंने ऐसा काम किया है, अभी इस वातावरण में काले हिरण तो बचे ही नहीं है, चिंकारा हिरण बहुत है, हजारों की तादाद में अभी मिल जाएंगे आपको, और उन्होंने ढूंढ के काले हिरणों का शिकार किया है सर, तो उससे ज़्यादा तो कोई गुना हो ही नहीं सकता। और हमारी नज़रों में तो सब गुनहगार थे, और जिसको देखा है सैफ अली खान को, तबू वगैरह सबको, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो कल बरी हो गए।
विश्नोई बहुल इन गांव में कहीं वन्य प्राणियों के लिए तालाब बने हैं तो कहीं परिंदों के लिए स्थान सुरक्षित है। काकानी के बुधराम विश्नोई कहते हैं, अदालत के फैसले से शिकार पर रोक लगेगी।
ये फैसला हम एकदम बड़ी माहौल खुशी का माहौल है विश्नोई समाज का, कि 20 साल से झगड़े लड़ाई को हम जीते हैं, हमारी समाज जीती है, हमारे पर्यावरण प्रेमी जीते हैं, जो प्रेम से प्रेम करते हैं, अभी वृक्षों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, उनकी लड़ाई जीत हुई हमारी।
बहुत फर्क पड़ेगा साहब, ये इंडिया लेवल का मामला है, इसमें अब शिकार के लिए सलमान को सजा होगी तो हर आदमी डरेगा, शिकार नहीं होगा।
कांकाणी के विश्नोई समाज ने 19 साल की कानूनी लड़ाई में बेजुबान चौपाइयों का साथ दिया। कांकाणी के मोहनलाल विश्नोई कहते हैं, उनके पिता ने अदालत को मौके पर हालात के बारे में बताया था।
बहुत ही मुश्किल था, हमारे पिताजी ने गवाह दी थी कि रोड से कितना दूर था ये, मतलब खून का निशान। तो हमारे पिताजी ने भाई कोर्ट में जज को फैसला दिया कि भाई तुम कहाँ थे जब, क्या साहब मैं रोड से 50 फुट, क्या फुट का मेरे को मालूम नहीं है, 50 पाउंड कह सकता, फुट को मेरे पास फिता नहीं है, कदम बता सकता हूँ कितने कदम पे ये शिकार किया था, भगवान का पूजा पाठ किया कि भाई उनको सजा मिली है, बहुत अच्छा है।
कहीं चिंकारे हैं तो कहीं शाह हिरण इन गाँव में बेरोकटोक विचरण करते मिलते हैं। न इंसान से कोई डर, न आबादी से परायापन। कांकाणी के बंशीलाल विश्नोई कहते हैं,
मतलब जानवर है तो यहाँ हमारे, मतलब ये भेड़ बकरियों की तरह सर, आप ये भी यहाँ ये रोड रोड जाओगे तो आपको 50-50, 100-100 की झुंड में ऐसे ही मिले, सिर्फ हमारे विश्नोई की वजह से। और जहाँ विश्नोई का घर है उसके आजू बाजू में रात को 50-100 हजारों की तादाद में ये बैठे, ये खेत है तो यहाँ पूरे ये हिरणी रात को बैठे मिलेंगे सर। हम यही ध्यान रखते हैं सर, हमारे बुजुर्ग यहाँ सोए रहते हैं ना, तो रात को यहाँ कोई गोली की आवाज़ आती ही नहीं है, जब गोली की आवाज़ आएगी तो यहाँ से पूरे घर वाले सब उठ उठ के बाहर आ जाएंगे कि यहाँ कोई न कोई शिकार हुआ है।
आज के दौर में कहीं आदमी आदमी से परहेज करता है तो कहीं अपनों को अपनों से ही परायेपन की शिकायत है, लेकिन इन गाँव में इंसानी आबादी जंगली जानवरों के साथ मिलकर मोहब्बत की कामयाब कहानी सुनाती मिलती है। नारायण बारेठ, BBC, कांकाणी, जोधपुर, राजस्थान।
भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहां क्या कुछ हुआ जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले मुंबई में BBC मराठी सेवा की सहयोगी जानवी मूले से बात की।
जी संदीप, हम शुरू में बताते हैं अपने श्रोताओं को कि कुछ लोग यहाँ पे समर्थक आए थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कहा है आइए पहले वो सुनते हैं।
हमारे बस में ना कहीं पानी धारी, ना ये तो नाश्ता धारी, बताओ सुबह है तो 8 बजे से चलो 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 सब जनता, चाय भी नहीं पीने दिए, कोई कोई चाय भी नहीं पिए, ना एक पानी धारे ना नाश्ता धारे, बताओ अभी तो वड़ा पा का खा के कोई रहेगा है? ये पहले बताओ।
जानवी, ये तो एक कार्यकर्ता की आवाज हुई जो अपनी शिकायत बयां कर रही थी, ये बताइए कि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इस रैली की वजह से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या हुई थी।
संदीप, ये मुंबई के बीचों बीच वाला इलाका है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बहुत ही ये नजदीक है। तो जब कल अमित शाह एयरपोर्ट से आए थे मुंबई में, तब एक बाइक रैली निकाली गई थी जिसकी वजह से हाईवे जैम हो गया, और आज जहां पर बांद्रा में ये रैली हो रही थी उस इलाके में जो हाईवे भी जैम हुआ था, तो इसकी वजह से मुंबई के लोगों को काफी तकलीफें हुई। उसके ऊपर BJP के ही कुछ कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हमने जानने की कोशिश की।
ट्रैफिक स्वाभाविक है, इतनी बड़ी रैली हो रही है जो राष्ट्रीय स्तर की रैली है, तो ट्रैफिक होना स्वाभाविक है, इसमें कोई राय नहीं है।
जैसे भी बहुत से समर्थक यहाँ पे आए थे रैली में, लेकिन उनमें से कुछ अपने नेताओं से नाराज भी दिखे।
हमारे इधर के नेता एक काम करते आते हैं, इलेक्शन का टाइम आएंगे वोट लेंगे, जाओ फिर आने का टाइम बोलेंगे पानी देंगे सब देंगे, बाद में इलेक्शन पाए जीत गए बाद में कोई नहीं आता, गंदगी है कहीं कुछ होता, कोई नेता नहीं देखने आते, बाद में सब कुछ देख के हार चुके, इलेक्शन रहेगा तो हाथ जोड़ के आते वोट मांगने, वोट से जीत जाएंगे दोबारा कभी आते नहीं है पलट के।
इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है आरक्षण को लेकर।
कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है, इतना नहीं आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी, ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है।
बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा।
अरे राहुल बाबा, आप मोदी जी को सवाल पूछ रहे हो, 4.5 साल का हिसाब पूछ रहे हो, देश की जनता आपको 4 पीढ़ी का हिसाब पूछ रही है, 4 पीढ़ी तक कांग्रेस का इस देश पर शासन रहा, कांग्रेस ने इस देश में क्या किया।
बीजेपी ने इस रैली के माध्यम से अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी की असली ताकत क्या है इसका अंदाजा कर्नाटक चुनाव में या फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ही आ पाएगा। जानवी मुड़े, बीबीसी मुंबई।
उत्तराखंड के एक कस्बे में फेक न्यूज की वजह से हिंसा और आगजनी का मामला सामने आया है, अधिकारियों का दावा है कि अब स्थिति सामान्य हो गई है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक झूठी खबर के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। एक 10 साल की हिंदू बच्ची से मुसलमान युवकों के गैंगरेप करने की यह खबर जैसे जैसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती गई, उनमें आक्रोश बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि भारी भीड़ प्रदर्शन करने शहर में निकल आई और मुसलमानों की दुकानें जला दी गईं। ये सब हुआ रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि कस्बे में। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश कुमार घिल्डियाल ने बीबीसी से कहा,
सोशल मीडिया में कोई किसी ने एक फोटो पोस्ट किया है, तो उसमें फोटो किसी ने गलत पोस्ट किया, किसी एक युवक और युवती के आधे शरीर की फोटो है, पूरा फोटो भी नहीं है, और उसमें ये लिख दिया कि ये किसी एक समुदाय के व्यक्ति ने दूसरे समुदाय की लड़की से रेप किया है। तो ये न्यूज थी, लेकिन ये हमने उसको पकड़ने की हम काम कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने ये किया, इसी पे लोग भड़के हैं कि ये कैसे हुआ, बट एक्चुअल में न कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है, न लड़का लड़की कोई आइडेंटिफाई हुआ है, ये सारी फेक न्यूज थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका खंडन भी कर दिया है, अब स्थिति कंट्रोल में है, अब तो खैर माहौल सामान्य है।
लेकिन प्रशासन के इस खबर का खंडन करने के बावजूद ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन किया और वो प्रदर्शन में शामिल हो गए। चश्मदीद ने बीबीसी को बताया,
बहुत हुजूम, बहुत पता नहीं कहां से इतनी भीड़ उमड़ के आई है, धीरे धीरे करके जमा होते चले गए। पहले तो थाने पे प्रदर्शन हो रहा था और ऐसे करीब तकरीबन 100-150 लोग पहले शुरुआत में थे, फिर हम लोग छत पे आके खड़े हो गए, फिर हमने देखा अचानक बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो सड़क में ही बैठ गए और फिर थाने के आगे प्रदर्शन करने लगे। जब ये लोग वापस आए तो ये वापसी के बाद क्या हुआ है, घटना है, उसके बाद थोड़ी देर में फिर ये हम तक पहुंच गया कि ऐसे सब मार्केट में हो गया।
वहीं एक स्थानीय पत्रकार हरीश गुसाई ने बीबीसी को बताया,
एक मैसेज वायरल हुआ है कि 10 साल की लड़की से रेप का हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है, इन छेड़खानी का मामला तो जरूर।
हालांकि शाम होते होते पुलिस ने ये साफ कर दिया कि छेड़खानी करने वाले तीनों युवक हिंदू हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी।
बीबीसी इंडिया बोल।
फेसबुक और व्हाट्सएप पर चलने वाली झूठी खबरों पर क्यों कर लेते हैं लोग यकीन? अगर झूठी खबरें रुकें तो देश नफरत और हिंसा से बच सकता है, मगर कैसे? यही है इस बार इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 7 अप्रैल शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रोताओं, आप जानते हैं महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की राय जानने के लिए, उनकी कहानियों को टटोलने के लिए बीबीसी की एक खास टीम जिसका नाम बीबीसी शी है भारत के कुछ शहरों का दौरा कर रही है। आज ये टीम पंजाब के जालंधर में थी, वहाँ क्या बातें निकलकर सामने आईं जानने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले वहाँ पर मौजूद बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से बात की।
संदीप, सबसे रोचक तो जलंधर आकर मुझे ये लगा कि यहाँ पर हम जब पंजाब या हरियाणा खासतौर पर इस रीजन में ट्रैवल करते हैं तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि ये वो इलाका है जहाँ पे लिंग अनुपात सेक्स रेशियो बच्चों में खासतौर पर बहुत बुरा है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों के मुकाबले कम है, तो शायद यहाँ पे औरतें कुछ उन मुद्दों को उठाएंगी। लेकिन इसके ठीक उलट यहाँ पे जो लड़कियां थी उन्होंने कहा कि अब गाँव में बहुत बदलाव आ रहा है और वहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पर अब जोर दिया जा रहा है। और ये उसी कड़ी में आगे की बात ये थी कि फिर उनसे जब हमने पूछा कि आपके मुद्दे क्या हैं तो वो उनके बारे में नहीं थे बल्कि और जो लोग हैं जो हाशिए पर हैं वो उनकी बात करना चाहती थी।
जो ट्रांसजेंडर्स है उनका वो भी एक सोसाइटी के पार्ट है, उन्हें भी वो दर्जा मिले जो एक मेल एंड फीमेल को मिलता है। ये देखा जाता है कि जो ट्रांसजेंडर्स है उन्हें बस ऐसा समझा जाता है दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। जो काम करती हैं फील्ड वो जो भी काम करती है वो उनका अपना मर्जी होता है या मे बी क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है, लेकिन हम हमेशा उन्हें गालियां देते या फिर हमेशा सोसाइटी से दूर रखते, सो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड मीडिया को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए।
तो एक तो ये बात थी और दूसरा ये कि बहुत सारी पत्रकारिता की छात्राएं थी जो आज हमें मिली, तो उन्होंने हम मीडिया वालों की ऊपर बहुत टिप्पणी की और वो ज्यादातर निंदा तो नहीं कहूंगी लेकिन वो लोग खुद क्योंकि अब मीडिया में पहली बार काम कर रही हैं, उनमें से कई लड़कियों ने इंटर्नशिप की थी तो उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं था।
मीडिया में जो है उनको बाकी सिर्फ लिमिटेड बीट्स तक नहीं रखना चाहिए, जैसे वो क्राइम बीट भी देनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बस जो लड़कियाँ हैं या तो वो डेस्क पे काम करेंगी या फिर वो एजुकेशन कवर करेंगी। मुझे लगता है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो लड़कियों का हरासमेंट होता है चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली, उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ से और अखबारों में बातें करने से कुछ नहीं होगा, जब हम खुद सुधार करेंगे पहले ग्राउंड लेवल पे शुरू होगा तभी हम आगे सुधार कर पाएंगे।
पर ये लड़कियां इस सब के बावजूद उनमें बहुत उमंग है, उनमें बहुत जोश है और उन्हें लगता है कि हाँ मीडिया का हिस्सा बनके वो भी किसी एक बदलाव की मिसाल बन सकती हैं।
दिव्या ये बताइए कि अब जलंधर के बाद बीबीसी शी टीम का आगे क्या योजना है, आगे हम क्या करने वाले हैं?
देखिए इस वक्त ये प्रोजेक्ट अब वापस कारवां जो हमारा दिल्ली आएगा, मैं घर जाऊंगी, लेकिन बीबीसी शी के तहत हमने जो इतनी सारी जानकारी जुटाई है उससे हम बहुत सारी कहानियां कर रहे हैं। जो बातें हमें बताई गई हैं कि मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जाना चाहिए, ये जो चाहत हमने उनकी समझी है उसके ऊपर हम एक विशेष पेशकश लेके आएंगे अपने रेडियो के श्रोताओं के लिए, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।
ये थी बीबीसी संवाददाता दिव्या आर। श्रोताओं, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है और बीबीसी संवाददाता रेहान फजल हर दिन की तरह आज भी वहां से ताजा खेल समाचार आपके लिए लेकर आए हैं।
आज का दिन भारत के लिए एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक लेकर आया। 53 किलोग्राम वर्ग में संजीता चानू ने 192 किलो वजन उठाकर सोने का तमगा हासिल किया। दूसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी और कनाडा की वेट लिफ्टर रहीं। जैसे ही चानू ने स्वर्ण पदक जीता सारा स्टेडियम खड़ा हो गया और उन्होंने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पदक जीतने के बाद चानू ने बीबीसी को बताया कि पदक जीतना उनके लिए इसलिए संतोषजनक है क्योंकि इससे पहले उनकी फिटनेस के बारे में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे।
14 कमलो गेम्स के बाद मेरा थोड़ा इंजरी हो गया था, इसलिए मैं दंग से मतलब ट्रेनिंग कर नहीं पाया और मैं इसलिए सब सोच रहे संजीता इस बार मैदान का चांस नहीं है, पर मैंने आस करके दिखाया।
शाम होते होते भारत के दीपक लाथेर ने 69 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। वो सिर्फ 18 साल के हैं, अगर उनमें थोड़ा अनुभव और होता तो वो यहाँ अपने पदक का रंग बदल सकते थे।
उम्मीद पूरी थी मेडल की लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण जो कि नहीं हो पाया।
क्लीन एंड जर्क में शायद आप और बेहतर कर सकते थे।
नहीं, एक्चुअली मैं स्नैच और बेहतर कर सकता था जो कि मिस हुई है। दोनों ही लिफ्ट इंपॉर्टेंट थी, अगर दोनों में से भी एक लगती तो काफी और अच्छा चलता।
बैडमिंटन की मिक्स टीम स्पर्धा में भारत ने अपनी जीत का क्रम जारी रखा। उन्होंने कल श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया था, आज उन्होंने स्कॉटलैंड को 5-0 से मात दी। महिला हॉकी में भी भारत ने कल के निराशाजनक प्रदर्शन में सुधार करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। बॉक्सिंग के 91 किलोग्राम वर्ग में नयन तंवर ने तंजानिया के बॉक्सर को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्क्वाश में पुरुषों के सिंगल्स में विक्रम मल्होत्रा हार गए जबकि महिलाओं के सिंगल्स में जोशना चिनप्पा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। रेहान फजल, बीबीसी गोल्ड कोस्ट।
आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं विवेचना। विवेचना में आज हम बात कर रहे हैं कुंदन लाल सहगल की। कुंदन लाल सहगल वो गायक जो मूक फिल्मों का दौर बीत जाने के बाद हिंदुस्तानी जनता ने जिसे बहुत पसंद किया, जिन्होंने अपने हिंदी संगीत जगत में एक ऐसी पहचान बनाई जो उनके बाद आने वाले गायकों ने उनकी नकल करने की कोशिश की। सहगल की 114वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
आवाज भारतीय संगीत इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन आवाज अभी भी जीवित है और हमेशा रहेगी। कालजयी कुंदनलाल सहगल को 40 के दशक में उस जमाने का तानसेन कहा जाता था। सहगल पर किताब लिखने वाले प्राण नेविल को अभी तक याद है जब 1937 में सहगल लाहौर पधारे थे।
मैंने कहा कि जरूर जाना है, तो वहाँ केएल सहगल को देखा। दिसंबर का मंथ था, कलकत्ता से आए थे, उनके लिए सर्दी लाहौर की बहुत थी और उन्होंने हाई नेक का स्वेटर पहना हुआ था, मेज पर हारमोनियम रखा और खड़े खड़े उन्होंने गाना शुरू किया। उन दिनों में ये इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं होती थी, जो गाना सुनने के लिए वो लगे होते थे ऐसे करके लाउड स्पीकर, लोग जितने थे वो कुर्सियां बेंच छोड़ के वहां जाकर ना ज्यादा अच्छी तरह सुनते थे। तो उन्होंने जब वो गाया तो क्या बता सकता था।
देवदास फिल्म में सहगल ने अब्दुल करीम खां की राग पीलू में पिया बिन नहीं आवत चैन बंदिश गाई थी। जब खां साहब को इसके बारे में बताया गया तो वो जीवन में पहली बार कोई फिल्म देखने गए।
अब्दुल करीम खान कभी सिनेमा में नहीं जाते थे, लेकिन उनकी देवदास में जो ठुमरी गाई है बिल्कुल टोटली ड्रंक स्टेज पर, उसका रिकॉर्ड नहीं निकला था, लेकिन फिल्म में है पिया बिन नहीं आवत चैन। वो जो उन्होंने गाई है जिस तरह से, उसको सुनने के लिए खान साहब सिनेमा देखने गए और उसको वहाँ से सुना और कहा क्या हाल कुंदन, तुमने बहुत ही कमाल कर दिया।
कुंदनलाल सहगल ने संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, शायद इसी की वजह से वो शुरू में दो बार HMV द्वारा लिए गए ऑडिशन में फेल हुए। जम्मू में वो कोठेवालियों को अपने उस्ताद के सामने अभ्यास करते हुए देखा करते थे। सहगल के दोस्त GN जोशी ने अपनी किताब डाउन मेमोरी लेन में उस घटना का जिक्र किया है जब 1935 में सहगल एक संगीत सम्मेलन में भाग लेने इलाहाबाद गए थे और वहां के एक मशहूर जमींदार उन्हें व सहगल को एक तवायफ के कोठे पर ले गए थे।
दरवाजे पर एक अधेड़ सी महिला ने आदाब अर्ज कहकर हमारा स्वागत किया। हमें बहुत रोशनी वाले एक बड़े कमरे में ले जाया गया। फर्श पर ऊनी गलीचे और गद्दे बिछे हुए थे। अचानक बगल के कमरे से दो युवा लड़कियां प्रकट हुईं। देवदास रिलीज होने के बाद सहगल पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सहगल उनका मुजरा सुनने आए हैं। तभी एक लड़की मेरे सामने पान की ट्रे लेकर आ गई। मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने पान मुंह में डालने की बजाय अपनी जेब में डाल लिया। कई ठुमरियां सुनने के बाद रात 2:30 बजे महफिल बर्खास्त हुई। जब हम जमींदार के घर पहुंचे तो उन्होंने उसी समय एक हारमोनियम मंगवाया। मैं उसे बजाने लगा। मैंने मिस्र खमाज में एक ठुमरी शुरू की। सहगल भी मेरे साथ गाने लगे। फिर उन्होंने मुझे रोक दिया और वो अकेले गाने लगे। जब उन्होंने गाना बंद किया तो भोर हो रही थी।
कहा जाता है कि सहगल को असम की एक राजकुमारी से इश्क हो गया था, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें उनसे शादी करने की अनुमति नहीं दी। और शायद इसी वजह से उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी थी। सैकल जहां भी जाते थे उनका हारमोनियम उनके साथ चलता था। वो बगैर हारमोनियम के गा ही नहीं सकते थे। कुंदनलाल सहगल और नूरजहां उस जमाने में भारत के चोटी के गायक हुआ करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोनों आपस में कभी मिले ही नहीं थे। उनको मिलवाने का श्रेय जाता है मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को।
एक दिन फिल्म जुगनू की शूटिंग के लिए स्टूडियो पहुंचा। फिल्म के डायरेक्टर शौकत साहब सामने बैठे थे और पास ही उनकी बेगम मलिका तरन्नुम नूरजहां भी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही बच्चों के से शौक के साथ मुझसे कहने लगी, भाई देखो आज एक काम जरूर करना होगा। मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगी इसी स्टूडियो में सैगल साहब फिल्म परवाना के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। अब मुझे बड़ा शौक है उनसे मिलने का। फिर शौकत साहब की तरफ इशारा करके कहने लगी कि कब से कह रही हूँ इनसे, लेकिन ये तुम्हारे भाईजान के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती, तुम ले चलो, तुम दोनों जानते हो ना। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखो ये मुल्क के दो बेहतरीन गलूकार दोनों फिल्मी दुनिया में ही काम कर रहे हैं और अपनी आवाज के जादू से दोनों ने सारे मुल्क को पागल बनाया हुआ और ये एक दूसरे को जानते तक नहीं। हम सीधे रिकॉर्डिंग हॉल में ही पहुंच गए और मैं अपने तई दिल में बहुत खुश था कि देखो आज किससे किसको मिला रहा हूँ। सैगल मरहूम नूरजहां को देखते ही एहतरामन फौरन खड़े हो गए। अब वो नूरजहां की तारीफ करने लगे, नूरजहां उनकी तारीफ करने लगी और मैं खड़ा सुनता रहा और म्यूजिशियन भी सारे सकते में खामोश बैठे दोनों को देख रहे थे।
कोलकाता के अपने दिनों के दौरान सैगल ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी लेकिन उन्हें इसे चलाना ही नहीं आता था। उनके दोस्त जी एन जोशी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं,
सहगल ने मोटरसाइकिल खरीद तो ली लेकिन वो उसे चलाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा। काफी दिनों बाद जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख गए, एक दिन उन्होंने पंकज मलिक को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाया। जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंकज मलिक पिछली सीट पर हैं ही नहीं। सहगल मोटरसाइकिल चलाने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पंकज मलिक कब पिछली सीट से नीचे गिर गए।
बहुत कम लोगों को पता है कि कुंदनलाल सहगल सिर्फ एक अभिनेता और गायक ही नहीं थे, वो गजलें भी लिखा करते थे। कोलकाता में ही वो अपने मेहमानों को अपनी बड़ी गाड़ी दे दिया करते थे और खुद ट्राम में चला करते थे। एक बार पुणे में उन्होंने एक गरीब औरत को अपनी हीरे की अंगूठी दे दी थी। नौशाद ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में सहगल की उदारता की एक रोचक कहानी सुनाई थी।
ये रिहर्सल कर रहे थे मुझसे कहने, भाई ये जल्दी छोड़ दीजिएगा आज शाम को, वो पद्म पंत संघानिया के वहाँ मेरा गाना है, 25,000 दे रहे हैं 2 घंटे गाने के लिए। अरे मैंने कहा कुंदनलाल जी मुबारक, 25,000 उस वक्त आज के कई करोड़ रुपए हुए। तो मैंने कहा कि मुबारक हो आपको 2 घंटे के 25,000, एक पूरी पिक्चर के हीरो को नहीं मिलते थे उस वक्त। उतने में एक कुली आया जो लाइट वेट बताते हैं, मराठा था गणपत, और उसने बेचारे मामूली सा कार्ड दिया अपनी बेटी की शादी है, सैगल साहब हमारा बेटी का लगन है, आप आएगा तो बहुत मान मिलेगा। किधर रहता है वो बच्चू भाई का चाल खोली नंबर 10 पर रहता है। शाम को वहाँ नहीं गए, उसकी खोली में बैठ के बाबुल मोर नैयर छूटो जाए गा रहे
बाबुल मोरा नैयर छूटो
खान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और इससे पहले कि कार्यक्रम का समापन करें, एक नज़र बीबीसी हिंदी के पन्ने पर। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, आज से 37 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस अधिवेशन को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का ये आखिरी उद्घोष था। कमल तो खिला पर उसे खिलाने वालों का राजनीतिक जीवन अस्तांचल की ओर है, ये विश्लेषण है भारतीय जनता पार्टी पर। पढ़ना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। होगी मुलाकात सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में, दीजिए इजाजत।